आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। फेडरल विपक्ष का कहना है कि गलत जानकारी के कानूनों को लेकर सरकार का रवैया घोर अयोग्यतापूर्ण है। वहीं सोशल मीडिया दिग्गज इलॉन मस्क ने सरकारी रवैये को फांसीवादी बताया है। लेबर के नए प्रस्तावों के अनुसार संचार नियामक ऑनलाइन जानकारी की निगरानी और प्रबंधन में अधिक सशक्त होंगे। नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर उनकी सालाना कमाई के 5% तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया मंच एक्स के मालिक इलॉन मस्क बार बार इन नियमों को फांसीवादी बताते रहे हैं और सरकार पर बोलने की आजादी छीनने का आरोप लगाते रहे हैं। स्काई एजेंडा से बात करते हुए विपक्ष संचार प्रवक्ता डेविड कोलमन का कहना था कि उन्हें जानबूझकर भ्रमित करने वाली जानकारी की सरकार द्वारा तय की गई परिभाषा से समस्या है, लेकिन वे उसे फांसीवादी नहीं कह सकते। वहीं नए श्रम शक्ति आंकड़े दिखाते हैं कि अगस्त में बेरोजगारी दर 4.2% रही और 30,000 नए लोगों को नौकरियां मिली। ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी की दर ऐतिहासिक रूप से कम है, लेकिन बढ़ते ब्याज दर और धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था के बीच धीरे धीरे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से आने वाले गुरुवार को इस मार्च की तिमाही के सारे आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। वहीं सिडनी में हुई आज मैराथन में व्हीलचेयर रेसर मैडिसन डी रोजारियो जीत गई हैं। वे हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक से लौटी हैं। 30 वर्षीय इस खिलाड़ी ने 54 मिनट और 10 सेकंड में ये मैराथन पूरी की, जो इनके निकटतम प्रतिद्वंदी से 15 मिनट से भी अधिक का फासला था। ये जीत तब आती है जब कुछ ही रोज पहले पेरिस पैरालंपिक्स में उद्घाटन समारोह का झंडा उठाने के कुछ ही देर बाद उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली थी। बावजूद इसके वे पेरिस खेलों में डटी रहीं और देश के लिए कांस्य और रजत पदक लेकर के वापस लौटी। एक सप्ताह में 2 मैराथन पूरी करने के बाद अब वे कहती हैं कि वे थक गई हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल का कहना है कि कथित रूप से यमन से एक जमीनी मिसाइल उनके इलाके में आ गिरी है, लेकिन इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है। इसी बीच इसराइली आर्मी ने गाजा के एक रिहायशी बिल्डिंग में हमला कर कम से कम 11 लोगों को मार दिया है, जिनमें अधिकांश बच्चे और औरतें ही थे। इसराइल का दावा है कि वे एक हमास कमांड सेंटर को निशाना बना रहे थे। हजारों इजरायली प्रदर्शनकारी नेतन्याहू सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे युद्ध विराम और बंधकों को छुड़ाने के लिए एक ठोस निष्कर्ष निकालें और इस नरसंहार को बंद करें। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के लिए पूर्व सऊदी अरब दूत प्रिंस तुर्की अल फैसल का कहना है कि निष्कर्ष तब तक नहीं निकल सकता जब तक इसराइल पैलेस्टाइन को एक स्वच्छंद देश नहीं मान लेता। और अंत में खबरें भारत से। भारत में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और फिर हत्या के मामले में डॉक्टरों का प्रदर्शन नियमित रूप से जारी है। डॉक्टरों के इस प्रदर्शन को खत्म कराने और उन्हें समझाने के लिए शनिवार को खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मिलने पहुंची और उन्होंने डॉक्टरों से बात भी की, लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन जारी रहे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेप मर्डर केस के बाद सभी जूनियर डॉक्टर कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित स्वास्थ्य भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सभी जूनियर डॉक्टर्स को वापस काम पर लौटने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का दर्द उनका खुद का दर्द है और वे उनके साथ खड़ी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन करना डॉक्टरों का अधिकार है और वे केवल उनका दर्द साझा करने वहां पहुंची। उन्होंने कहा, हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है, मैं आप सभी की परेशानी समझ सकती हूं, इसलिए आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि इस मामले में जो भी दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। मैं सिर्फ आपसे अनुरोध कर रही हूं कि आप काम पर लौट जाएं। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक भी बुलाई थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर उनसे मिलने नहीं पहुंचे। तब ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर आपको मेरी सरकार पर भरोसा ही नहीं तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ 15 सितंबर 2024 के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। टीजे वैशाली को इजाजत, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।